कॉलेज की कैंटीन उस वक्त अपने रोज़मर्रा के शोर में डूबी हुई थी। कहीं चम्मच प्लेट से टकरा रही थी, कहीं हंसी के ठहाके थे और कहीं किसी प्रोफेसर की क्लास को लेकर शिकायतें। एक कोने की मेज़ पर अदिति और आर्यन बैठे थे। आर्यन अपनी दुनिया में गुम, उसके सामने किताबें खुली थीं, पन्नों पर उंगलियां टिकाए वो किसी पैराग्राफ को बार बार पढ़ रहा था, लेकिन साफ था कि पढ़ाई से ज़्यादा वो सोच में डूबा हुआ है। अदिति उसके सामने बैठी थी, फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर कम और आर्यन पर ज़्यादा जा रही थीं। उसने फ़ोन लॉक किया, एक पल रुकी, फिर अचानक बोल पड़ी, आर्यन, शामली। आर्यन ने किताब से नज़र उठाई। क्या? अदिति ने कुर्सी से थोड़ा पीछे टिकते हुए कहा। आज सुबह पहली रसोई में जो हुआ वो तुम्हें पता है? आर्यन ने सिर हिलाया। थोड़ा बहुत, मधु दीदी ने बस इतना बताया कि तुम दोनों के बीच हल्की बहस हुई। हल्की? अदिति के होठों पर खिंची हुई मुस्कान आ गई। उनके लिए हल्की होगी। आर्यन ने किताब बंद की। अब वो पूरी तरह उसकी तरफ था। क्या कहा उसने? अदिति ने सांस ली। उसने समझाने की कोशिश की कि घर में सबको क्या पसंद है, कैसे चीज़ें होती आई हैं। फिर थोड़ा रुक कर बोली, पर हर बात में ये भी जताया गया कि मेरी पसंद बाद में आती है। आर्यन के चेहरे पर हल्का सा तनाव आया। अदिति, वो ऐसा नहीं सोचती होंगी। मुझे लगा, अदिति ने धीरे से कहा, कि वो चाहती है मैं खुद को ढाल लूं बिना सवाल किए। उसकी आवाज़ में शिकायत ज्यादा थी। आर्यन ने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए कहा, देखो शामली ऐसी नहीं है। अदिति चौंक गई, उसे ये जवाब उम्मीद से पहले मिला था। ऐसी नहीं है मतलब? उसने भौहें उठाई। आर्यन ने बिना झिझक कहा, वो किसी को दबाने वाली इंसान नहीं है, उसे घर की जिम्मेदारी निभाना अच्छे से आता है बस। अदिति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ खिसक गया। आर्यन बोलता गया, उसे सबकी पसंद नापसंद पता है, किसे कितना मीठा, किसे कितना नमक, कौन क्या नहीं खाता वो सब जानती है। क्योंकि वो जिम्मेदारी अच्छे से निभाना जानती है, उसकी आवाज़ में सम्मान था। ऐसी जिम्मेदारी हर किसी से नहीं संभलती। अदिति की उंगलियाँ फ़ोन पर कस गईं। वो मन में सोची, और मेरी जिम्मेदारी, मेरी जगह? लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आर्यन ने आगे कहा, शामली ने अगर कुछ कहा भी होगा तो वो गलत मंशा से नहीं कहा होगा। अदिति ने हल्की हंसी हंसी, बिना आवाज़ के, तो तुम मानते हो, उसने कहा, कि मेरी बात में गलती थी? आर्यन थोड़ा चौंका, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, पर तुम बार बार उसे सही ठहरा रहे हो, अदिति ने पहली बार सीधे कहा। आर्यन ने माथा सहलाया, क्योंकि वो वाकई गलत नहीं है अदिति। यही वो वाक्य था जिसकी अदिति को उम्मीद नहीं थी। उसके भीतर एक चुभन सी उठी। उसने नजरें मेज पर रख दी। ठीक है, उसने कहा, मैं कुछ नहीं कह रही। आर्यन ने महसूस किया कि उसका स्वर बदल गया है। अदिति, नहीं, उसने बात काट दी, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराई, लेकिन आंखों तक मुस्कान नहीं पहुंची। मुझे बस ये समझ नहीं आया कि तुम इतने पक्के तौर पर उनका पक्ष क्यों ले रहे हो। आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, क्योंकि मैंने उसे देखा है। कैसे? घर को थामते हुए, सबको जोड़ते हुए, और बिना शिकायत किए। अदिति ने सिर झुका लिया। वो सुन रही थी पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आखिर आर्यन शामली का इतना फेवर क्यों ले रहा है? उसके मन में सवाल उभरा, क्या मेरी बात उतनी मायने नहीं रखती? आर्यन ने धीरे से कहा, तुम नहीं हो उस घर में। अदिति ने तुरंत नजर उठाई, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे चुप रहना चाहिए? नहीं, पर समझने का वक्त देना चाहिए। अदिति ने गहरी सांस ली। मैं समझना चाहती हूँ, उसने कहा, पर हर बार मेरी बात काट दी जाए, ये कैसे सही है? आर्यन कुछ नहीं बोला। कैंटीन का शोर उनके बीच आकर बैठ गया। कुछ पल बाद आर्यन ने कहा, शायद तुम दोनों एक दूसरे को गलत जगह से देख रही हो। अदिति ने मन में सोचा, और तुम मुझे कहाँ से देख रहे हो? लेकिन उसने ये सवाल जुबान पर नहीं लाया। वो उठ खड़ी हुई। क्लास का टाइम हो रहा है। आर्यन भी उठा। अदिति, उसने रुककर उसकी तरफ देखा, मैं नाराज नहीं हूँ, उसने कहा, बस हैरान हूँ। फिर धीमे से जोड़ा, मुझे लगा था तुम पहले मुझे समझोगे। आर्यन कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं मिले। वे दोनों साथ साथ चले, पर कदमों की रफ्तार अलग अलग थी। अदिति के भीतर एक नया सवाल जन्म ले चुका था। ये बहस शामली से नहीं थी, ये उस जगह से थी जहां वो चाहती थी कि आर्यन उसके साथ खड़ा हो, और वो जगह अभी खाली थी। हवेली में शाम ढल चुकी थी, आंगन की रोशनी पीली पड़ गई थी और दियों की लौ स्थिर होने लगी थी। शामली अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हाथ में पूजा की माला थी, लेकिन उंगलियां बिना गिने ही मोतियों पर फिर रही थी। नजर सामने रखे आईने पर टिक टिक कर जा रही थी, जैसे उससे कोई जवाब मांग रही हो। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया? उसके मन में सवाल बार बार उभर रहा था। अदिति नहीं है, शायद मेरी बात उसे चोट पहुंचा गई हो। वो कुर्सी से उठी, खिड़की के पास गई। नीचे आंगन में सब सामान्य था, हंसी, आवाजें, हलचल, लेकिन उसके भीतर असामान्य शांति थी, भारी। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बड़ी ठाकुराइन, मधु की आवाज थी।
आ जाओ, श्यामली ने पलटे बिना कहा। मधु अंदर आई, हाथ में पानी का ग्लास था, आंखों में अपनापन। आप परेशान लग रही हैं, उसने सीधे कहा। श्यामली ने गहरी सांस ली। मधु, उसने कहा, आज सुबह मैंने अदिति से जो कहा, कहीं वो ज्यादा सख्त तो नहीं था। मधु ने ग्लास मेज पर रखा। आपने क्या कहा? श्यामली ने सब बता दिया, पहली रसोई, बहस, मीठे की बात और अदिति की आंखों में उभरती चोट। मधु ध्यान से सुनती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। बड़ी ठाकुराइन, उसने कहा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि वो नहीं है, श्यामली ने धीमे से कहा, और मैं उसे समझाते समझाते शायद दबा गई। मधु ने सिर हिलाया। नहीं, उसने भरोसे से कहा, आपने जो कहा अच्छे मन से कहा। श्यामली ने उसकी ओर देखा, और छोटी ठाकुराइन भी ये समझती हैं, मधु ने आगे कहा, वो अभी बोल नहीं पाती पर दिल से बुरी नहीं मानती। श्यामली की आंखें नम हो गई। तुम्हें कैसे पता? मधु मुस्कुराई, क्योंकि घर में जब कोई सही होता है तो हवेली खुद बता देती है। श्यामली ने पहली बार उस शाम सुकून की सांस ली।